हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 12। कृपया इन अद्भुत शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैदत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगा हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगा हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। थैंक यू। शब्दों का अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं इष्टान, इष्टान मतलब वांछित, भोगान यानी जीवन की आवश्यकताएं, ही निश्चय ही वह यानी तुम्हें देवान देवतागण, दास्यन्ते प्रदान करेंगे। भगवान कहते हैं कि अगर आप यज्ञ करोगे ना, तो भगवान ने पहले वाले श्लोक में क्या बताया था, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यति। अगर आप देवताओं को प्रसन्न करोगे तो देवता आपको प्रसन्न करेंगे। और इस तरह से क्या होगा कि मनुष्य जब यज्ञ करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे ना, तो देवता सहयोग करेंगे आपको आपकी आवश्यकता। और आज भगवान बताए इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, आपको यज्ञ भाविता यानी कि जब आप यज्ञ करोगे तो देवतागण आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आपको वांछित वस्तुएं देवताएं हमें, देवता लोग हमें क्या देते हैं, जैसे इंद्र देवता वर्षा करते हैं, ठीक है, सूर्य देव अग्नि प्रकाश देते हैं और वरुण देव जल देते हैं, तो इसके अतिरिक्त भी समस्त चंद्रमा चांदनी देते हैं और सब चीजें बहुत सारी, पृथ्वी माता जो है, धरती माता जो है वो हमें अन्न प्रदान करती है और भी बहुत सारे सारे देवताओं के ऊपर भगवान ने जो जो ना हमें वांछित वस्तुएं प्रदान करने के लिए ड्यूटी रखी है तो वो सब हमें प्रदान करते हैं। तब जब हम यज्ञ करते हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ भगवान बताते हैं दास्यन्ते यज्ञ भाविता, भाविता का मतलब होता है यज्ञ करने से वो प्रसन्न होते हैं और वो हमें सब चीजें प्रोवाइड करते हैं। और आगे भगवान बहुत ही खास बात बता रहे हैं, तैर दत्तान, तैर मतलब उनके द्वारा। जब देवता यज्ञ से प्रसन्न होंगे और आपको चीजें जो प्रोवाइड करेंगे, तैर यानी उनके द्वारा दत्तान दी हुई वस्तुएं अप्रदाय, आप उनको वापस से भेंट नहीं करोगे, वापस से यज्ञ नहीं करोगे तो अप्रदाय भ्यो, ये भ्यो का मतलब होता है इन देवताओं को वापस से नहीं दोगे तो यह भुंगते, ऐसे लोग जो खाली भोग करते हैं खुदी खुदी और देवताओं के लिए यज्ञ नहीं करते हैं तो उनके लिए कहा ये भुंगते स्तेन। स्तेन का क्या मतलब होता है बताए? स्तेन संस्कृत में चोर को कहते हैं, कि अगर आप देवताओं को वापस से वो पदार्थ का भेंट नहीं दोगे, वापस उन पदार्थों के से यज्ञ नहीं करोगे तो क्या होगा? ते स्तेन एव सह, कि वो निश्चित रूप से चोर कहलाएगा। जैसे इसका आसान से हम समझ सकते हैं, जैसे हम सरकार से जल लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं पर बिल नहीं देंगे तो फिर सरकार की नजरों में गुनाहगार हो जाएंगे। और सरकार क्या करेगी, वो हमें बिजली जल इत्यादि सप्लाई करना बंद कर देगी और साथ में पनिशमेंट भी देगी। तो इसी तरह से जब देवताओं के जितने भी हमें देवता ने सारी सहूलतें और वांछित वस्तुएं प्रदान की हैं, यदि हम यज्ञों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न नहीं करते हैं तो देवता लोग के नजरों में भी हम तेन एव स, भगवान कहते हैं कि तैर दत्ता न प्रदाय भ्यो यो भुंगते तेन एव स, यदि वो वापस से देवताओं को भेंट नहीं लगाते हैं तो फिर वो चोर कहलाते हैं। अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। जब आप यज्ञ करोगे तो प्रसन्न होंगे और सब तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बगैर भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। बहुत ही सुंदर श्लोक है और श्री रूपा जी बहुत ही सुंदर इसका तात्पर्य हमें समझाएंगे। यहाँ पर भगवान ने क्या कहा है कि अगर आप देवताओं के लिए यज्ञ करते हो तो यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे और आपकी वांछित वस्तुएं आपको प्रदान करेंगे, लेकिन यहाँ तक खत्म नहीं करना है, फिर क्या करना है, वापस से देवताओं को अर्पण करना है। ये बताया ना कि आवश्यक, किंतु जो इन देवताओं को इन वस्तुओं को वापस से अर्पण नहीं करते, खाली स्वयं भोगते हैं तो यो भुंगते स्तेन एव सह, स्तेन हो जाते हैं, वो चोर हो जाते हैं, देवताओं की नजर में गुनहगार हो जाते हैं। वास्तव भक्तों, हम हमारे जीवन की ये जो भौतिक शरीर है उसके लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो हमें देवताओं के जरिए से पूरी होती है हमारी। तो ये देवता हमें बहुत कुछ देते हैं, जैसे अमेरिका में एक मैगजीन है द नेचर के नाम से, और उसमें एक आर्टिकल छपा था जिसमें ये आर्टिकल के नाम का नाम था अवर बिल टू द अर्थ, यानी कि अर्थ से हम लोग जो लेते हैं, अर्थ से हम क्या लेते हैं, अनाज लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, तो उनका एक साल का बिल अगर उन्होंने ऐसे सोचा था कि कितना होगा, इमेजिन किया तो 24 बिलियन डॉलर्स, यानी कि बहुत बहुत मात्रा में हम अर्थ से लेते हैं। लेकिन फिर उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि इसके साथ सूर्य का बिल तो हमने अटैच किया ही नहीं है, तो सूर्य इस जो सूर्य का एक दिन का बिल के कहा जा रहा था कि अमेरिका के एक साल के बजट से ज्यादा है सूर्य का बिल, तो इतना सब हम भगवान की सृष्टि से ले रहे हैं, भगवान की प्रकृति से ले रहे हैं, तो उनको संतुष्ट करने के लिए हमें यज्ञ करना आवश्यक है। अगर यज्ञ नहीं करते हैं तो क्या होता है, देवता कुपित हो जाते हैं और फिर वो सप्लाई करना बंद कर देते हैं, जैसे गवर्नमेंट भी सप्लाई करना बंद कर देगी ना अगर हम बिल नहीं देंगे, तो उसी तरह से देवता भी सप्लाई करना बंद कर देंगे। तो अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई बहुत सारे लोग यज्ञ तो नहीं कर रहे हैं लेकिन सप्लाई बंद नहीं हो रहा है, मतलब सूर्य कभी रोशनी देना बंद नहीं करता या वर्षा होना बंद नहीं हो रही है। तो वास्तव में क्या होता है कि हमें इसको तत्व से समझना है कि इससे देखो अब इतनी सारी आपत आते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतनी सारी मिजरीज, विपत्तियां जो आजकल हमारे समाज में आ रही हैं, वो सब इसी कारण से तो है कि जीवन शैली मनुष्य की बिगड़ी हुई है। वास्तव में यज्ञ खाली ये नहीं कि बस यज्ञ कर दिया, अब ये भी नहीं है कि खाली यज्ञ कर दिया और उससे समस्या सॉल्व हो जाएगी। यज्ञ करना भी काफी नहीं है। भगवान ने वेदों में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, जो विधि विधान दिए हैं, उनके अनुसार पहले जीवन जीना है और फिर यज्ञ करना है। कुछ जगह से बोल सकते हैं ना कि भाई यज्ञ हो रहा है उनके हिसाब से भी, फिर भी तो वहां पर भी तो सूखा होता है वहां पर भी। तो जैसे अब हम ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे एक कंट्री हो, उसमें जब है ना गवर्नमेंट बिजली सप्लाई करती है इलेक्ट्रिक, ठीक है, सप्लाई करती है तो सारा कंट्री वहां पर सब लोग यूज करते हैं और बिल केवल 4-5 लोग ही भरे, तो क्या वहां पर सरकार जो गवर्नमेंट है वो सप्लाई करना बंद कर देगी या फिर करती रहेगी? क्योंकि पूरा शहर तो कर ही नहीं रहा है, सिर्फ 2-4 लोग कर रहे हैं तो फिर उनकी तो सबकी कटेगी ना। तो ये आवश्यक है कि समाज में यह ज्ञान, यह विज्ञान समस्त जीवों को बांटा जाए। यही उद्देश्य है कृष्ण भावना अमृत का, यही उद्देश्य है श्रील प्रभुपाद का, यही उद्देश्य है श्रीमद् भगवद गीता का कि ये समस्त शिक्षा जो है वो समस्त प्राणी मात्र तक पहुंचानी चाहिए। वास्तव में भक्तों अब यहाँ पर पता चलता है, अगर पीछे का हम लोग देखते हैं तो 1950 से लेकर 2000 तक संसार में इतनी विपत्तियां नहीं आई जितनी 2000 से लेकर 2004 तक। यानी कि जिस प्रकार मनुष्यों की जीवन शैली बिगड़ती जा रही है उसी प्रकार से उतना ही ज्यादा विपत्तियां आना शुरू हो गई हैं। एक ही कंट्री में एक जगह पर सैलाब आया हुआ है, यहाँ पर अगर देखा जाए पंजाब में सैलाब आया हुआ है और सिंध में सूखा पड़ा हुआ है, बारिश भी नहीं होती। तो ये सब संतुलन बिगड़ा हुआ है, इसका कारण ये है कि जीव ने यज्ञ करना छोड़ दिए हैं। तो जब जीव यज्ञ नहीं करता तो देवतागण अप्रसन्न हो जाते हैं और इस तरह से मनुष्य को कष्टों का सामना करना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ही समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। शुभपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। ये भगवान विष्णु ने यानी भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये डिपार्टमेंट सौंपा हुआ है कि समस्त भोग सामग्री सबको आप प्रदान कीजिएगा। तो अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी पूछते देवताओं को जरूर संतुष्ट करना चाहिए नियत यज्ञ करके। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति की गई है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। रिलैक्स कर देते हैं श्री प्रभुपाद जी कृष्ण भक्तों को ये कहकर कि जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं वो समझो डायरेक्ट से कृष्ण को दे रहे हैं, वो भी तो इनडायरेक्टली कृष्ण को ही दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वेदों में जो अलग अलग देवताओं के लिए यज्ञ की संस्तुति की गई है वो सब अंततः भगवान श्री कृष्ण को ही अर्पण किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो आगे श्री प्रभुपाद जी के कहते हैं किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, अब किसी को बेचारे को भगवान की बात ही नहीं समझ में आती है, वो यही सोचता है कि मुझे ये इस देवता ने दिया है, सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, धरती से ये मिल रहा है, इंद्र से वर्षा मिल रही है, तो बल्ले वो क्या करे, पत्तों को पानी देता रहे। लेकिन किसी क्या नहीं, श्री प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि किंतु जो यह नहीं समझ सकता है भगवान क्या है उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। उनको के पहले क्या कर रहे हैं, अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचा जैसे हम पढ़े थे कि जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाओगे ना, जब आपको ये पता चलेगा सर्व कारण कारणम केवल कृष्ण है, तो फिर आपके पास कर्ज नहीं रहेगा क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हो कृष्ण। और आगे जो श्लोक नंबर 13 है उसमें तो श्री प्रभुपाद जी क्लियर कर ही देंगे भगवान श्री कृष्ण अपने शब्दों में बता देंगे। और यहाँ पर श्लोक उपाय जी कहते हैं, लेकिन जो ये नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ विधान है। अनुष्ठान करता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। अब यहाँ पर श्लोक उपाय जी ने खास बात बताई है कि जो अनुष्ठान करता है ना, उसके जो भौतिक गुण है, यानी कि जो अनुष्ठान करता है, यानी जो काम कर रहा है, जो व्यक्ति है ना, उसके अंदर जो भौतिक गुण है, चाहे वो सत्व गुण में हो, चाहे वो रजोगुण में हो या तमोगुण में हो, जितने भी महादुर गुण है, उसके अनुसार ही वेदों में क्या है, एक बात नहीं लिखी हुई है वेदों में। इसलिए हम लोग पहले भी पढ़ा था कि 2.42 में भगवान ने बताया था, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चित वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्ति इति वारिना। अर्थात अल्पज्ञानी का क्या मतलब होता है, यानी कि जिसके पास थोड़ा ज्ञान हो या बुद्धि थोड़ी कम हो, वो मनुष्य वेदों के उन अलंकारमय शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो वेदों में आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपका जो स्तर है ना, जिस जगह पर हो, आपके लेवल के हिसाब से हर चीज बताई गई है कि आपको विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान बताया गया। अब आगे श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार ही की जाती है। अब जैसा आपके अंदर गुण होगा तो उसी हिसाब से आप देवता चॉइस करोगे कि ये देवता की मैं भक्ति करूंगा, अभी ये इसकी पूजा करूंगा। और भगवान तो साफ साफ कह देते हैं कि मैंने तुमको टोटल फ्री विल दिया है। 7.21 में भगवान ने यहाँ तक कह दिया, यो यो याम याम तनुम भक्ते श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य आचराम श्रद्धाम तामेव विददाम्यहम्। तुम किसी भी देवता को चॉइस करो, उसकी पूजा करो, उसकी भक्ति करो, मैं तुम्हें उसकी भक्ति करने के लिए पर्याप्त श्रद्धा भी प्रोवाइड करूंगा। तुम्हारी इच्छा से जियो। जब तुम थक जाओगे ना अपनी इच्छाओं को पूरा करते 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 करते, जब बेजार हो जाओगे, तब तुम आना मेरी शरण में, मैं तब भी तुम्हें अपना लूंगा। लेकिन जब तक तुम्हें ये रियलाइज नहीं हो जाता है कि संसार की समस्त वस्तुएं और समस्त दूसरी जितनी भी जो कुछ भी है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे देव है, वो कभी भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकते, जब तक तुम मेरी शरण में आ नहीं जाते, तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। जब तक तुम्हें ये रियलाइज नहीं होता, तब तक भटकते रहो संसार में और भोगते रहो संसार के जन्म मरण के चक्करों में फंसते रहो। लेकिन जब तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आओगे, तब भगवान कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे अपना लेता हूँ, जो मुझसे प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूँ। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता बताने के बाद भी यही कहते हैं, तथा गुरु मैंने बता दिया तुमको कि ऐसा करना है, अभी तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है वैसे करो। तो यहाँ पर भी श्री रूपा जी बता रहे हैं कि अब विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। जैसे आपके अंदर गुण होंगे उसके अनुसार आप देवता की पूजा करोगे। उदाहरण आते हैं, यहाँ पर श्री रूपा जी एग्जाम्पल देते हैं कि मांसाहारियों के लिए देवी काली की पूजा करने के लिए कहा गया। मांसाहारी काली की पूजा करते हैं और काली को बल देते हैं, यानी कि उनको अर्पण करते हैं और फिर खाते हैं, ऐसा विधान है इनका। कि फिर जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बल का आदेश है कि वहां पर है ना, काली माता के ऊपर पशु बल दिया जाता है, किंतु जो सत्वगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई। अब यहाँ पर बता दिया कि ऐसा नहीं है कि हर किसी को हरूभरू काली की पूजा करनी है और अनिवार्य है वहां पर जाके पशु बलि देना और वहीं पर उस पशु का आहार भक्षण करना, ये नहीं है। सत्वगुणी के लिए नहीं है, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते सत्वगुणी के लिए क्या है, विष्णु पूजा, कि वो भगवान की भक्ति करेंगे और वहीं से भगवान से ही संतुष्ट होंगे, उनको ये मांसाहार वगैरह की आवश्यकता नहीं रहती। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। अब जितना भी यज्ञ करते हैं ना, भले चाहे देवी काली का करें, अब तमोगुण में रहकर करते हैं, फिर ऐसे करते 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 जब उनके पुण्य हो जाते ना इकट्ठा, फिर उनका गुण जो है वो विकसित होता है, आगे बढ़ते हैं, फिर शुद्ध सत्वों में आते हैं, ऐसे करते करते करते। लेकिन जो पहले से ही शुद्ध सत्वों में, उसको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, उधर तक पहुंचना है। देय क्या बता रहे हैं यहाँ पर, उत्तर उत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। दिव्य पद क्या है, कृष्ण भावनामृत। आगे श्री बाबा जी बताएंगे कि सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहा जाता है। हमने कल पढ़ा था ना पंच यज्ञों के विषय में, तो वो सामान्य व्यक्ति है, अभी वो ऊपर नहीं उठे हैं। ये सामान्य व्यक्तियों के लिए 5 यज्ञ हैं, कौन कौन से, किंतु मनुष्य को यह जाए कौन कौन से बताएंगे। कल हमने बताया था कि पितृ यज्ञ होते हैं, देव यज्ञ होते हैं, ऋषि यज्ञ होते हैं, और मनुष्यों के लिए यज्ञ होते हैं और पशुओं के लिए यज्ञ होते हैं। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। को अब देखो जितनी भी आवश्यकता है ना संसार में, हमें जो कुछ भी प्रोवाइड हो रहा है, जो कुछ भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, जिस चीज से भी हम जिस चीज को भी यूज कर रहे हैं ना, वो भगवान के प्रतिनिधि देवताओं के जरिए ही हम तक पहुंच रहे हैं, है ना। सारी चीजें देवता हमें प्रोवाइड करते हैं, कोई कुछ बना नहीं सकता। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज की इंग्रेडिएंट्स नहीं बना सकते। भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं 7.45 में कि ना भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच। ये जो 8 शक्तियां है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इससे ही सब कुछ बना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है वो इंग्रेडिएंट्स है, और मन बुद्धि अहंकार उनको मिक्स करके कोई ना कोई चीज बनती है। तो फिर ये सारे संसार में जो कुछ भी है वो इन्हीं से मिलकर बना है, और इन्हीं देवताओं के जरिए हमें पहुंचती हैं ये सारी चीजें। कोई भी कुछ खुद से बना नहीं सकता। जैसे कोई अगर कारपेंटर बोलता है कि भाई ये फर्नीचर मैंने बनाया है, तो आप उससे पूछ सकते हो भाई फर्नीचर आपने बनाया है तो लकड़ी, तो बोले लकड़ी तो मैं ना कारखाने से लेकर आया। बोले कारखाने में लकड़ी किधर से आई, तो बोलेंगे वृक्ष से आई। वृक्ष में कहां से आई, तो बोलेंगे ये धरती से आई। और धरती कहां से आई, भगवान कहते हैं पृथ्वी तो मेरी शक्ति है। और इस तरह से किसी भी चीज को आप पकड़ के बोल सकते हो कि ये आई है बेसिकली कहां से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, और भगवान अपने प्रतिनिधियों के द्वारा ये हम तक पहुंच जाते हैं। कोई कुछ भी खुद से नहीं बना सकता। उदाहरण आज मानव समाज के भोज्य पदार्थ को ले लें। अभी श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर भोज्य पदार्थ जो हम अनाज इत्यादि खाते हैं ना, उसके विषय में बताए। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न फल शाक दूध चीनी आदि हैं। अभी देखो अन्न कहाँ से आता है, पृथ्वी से आता है, ठीक है, और है ना फल कहाँ से आते हैं, वो भी पृथ्वी से, वृक्ष जब होते हैं उससे, शाक सब्जियां भी पृथ्वी से आती हैं, दूध कहाँ से आता है, दूध पशुओं से आता है, तो पशु कहाँ से आते हैं, और चीनी, ये सब है ना शाकाहारियों के लिए तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। हाँ, मनुष्य जानवर भी नहीं बना सकता, मनुष्य पृथ्वी भी नहीं बना सकता, मनुष्य फल सब्जियां वगैरह खुद से नहीं बना सकता। अब ये पृथ्वी है तो उसमें जब वो बीज डालते हैं, बीज भी नहीं बना सकता, तो बीज भी भगवान ने जब मत्स्य रूप धारण किया था और समस्त बीजों को संसार में यहाँ पर लेकर आए थे, तो ये सब जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा है ना। तो मनुष्य स्वयं से कुछ नहीं बनाता। एक और उदाहरण यहाँ विष्णु रूपा जी एक और उदाहरण दे रहे हैं कि यथा उष्मा प्रकाश जल तथा वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, उनमें से किसी को भी बनाया नहीं जा सकता, है ना। गर्मी, जल, प्रकाश, वायु और ना जितनी भी चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, तो कोई मनुष्य ये नहीं बोलता कि मैं है ना जल बना सकता हूँ। अब जल बनाएगा तो भी जो H2O फॉर्मूला जो होगा वो भगवान की वायु से या इस तरह से भगवान की दी हुई प्रकृति से ही वो उठाएगा। उस प्रकृति से कुछ उठाए बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता है जी। और अपनी बुद्धि यूज किए हुए भगवान कहते हैं बुद्धि बुद्धि मतामस्मी, बुद्धि भी तो मैंने दी है। तो इनमें से किसी को भी जीव अपनी शक्ति से नहीं बना सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी वर्षा या प्रातः कालीन समीर। यहाँ पर कितना अच्छा भगवान श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब तक कृपा नहीं करेंगे कृष्ण, तो ना चांदनी प्राप्त होगी, ना वर्षा होगी, और ना ही सुबह सुबह जब एक तो मंगल आरती के टाइम पर ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है और हम प्रेम से भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये इतनी सुंदर समीर इतनी रात की चांदनी, ये सब कृष्ण की कृपा है और जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों यानी कि अब जो उत्पादन है ना, जैसे कुछ बनाया जाता है मिलाकर ना मसनुआत उसको बोलते हैं, तो उनके लिए भी अनेक कच्चे जो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, यथा धात गंधक और ना पारद मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाए, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो जाए। कितना सुंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार इसको वापस से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि जो देवता हैं वो करते हैं ना, मनुष्य की सारी जितनी भी आवश्यकताएं उनको पूरा करते, क्यों पूरा करते हैं, इस उद्देश्य से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग करें, कि हम ये सब चीजें यूज करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बना सकें। कि अगर हम ये सब चीजें, जैसे अगर हमें हमारे पास सब्जियां नहीं होंगी, अनाज नहीं होगा, जल नहीं होगा, वायु नहीं होगा, दूसरी सारी चीजें नहीं होंगी, तो फिर हमारा जीवन का शरीर यात्रा यही रुक जाएगा ना, ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी तो जीना संभव नहीं रह जाएगा, जीना कठिन हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि हम हमारा ये जीवन अगर खत्म हो जाएगा तो हम आगे प्रगति नहीं कर सकेंगे। तो ये हमें ये सारी चीजें इसलिए प्रोवाइड करते हैं जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। कि अब ये तुम्हें इनकी इन्हीं चीजों के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, बस अब क्या करना है, आपके जीवन का वास्तविक क्या अर्थ है कि आप भौतिक जीवन के संघर्ष से बच सको। कितनी कृपा है कृष्ण की, उसने मनुष्य को इस संसार में, हालांकि मनुष्य अपराधी है, फिर भी इस संसार में भेजा और उसके लिए समस्त सुविधाओं के लिए देवताओं को नियुक्त कर दिया कि मेरे बच्चों को जो जो चाहिए ना उनको प्रोवाइड करते रहना ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कभी देखो किसी भी मनुष्य, जो मनुष्य पैदा होता है उस कभी ये भी नहीं बोलेगा कि मैं कितना गरीब हूँ कि सूर्य देव मुझे प्रकाश नहीं दे रहे हैं, है ना। कभी ये नहीं बोलेगा कि वायु भी मुझे नहीं मिल रही है या जल नहीं मिल रहा है या बारिश होती है तो मेरे घर तक नहीं आती है क्योंकि मेरे अपराध इतने ज्यादा है। भगवान अपराधियों को, चोरों को, जो भी है उन तक अपनी ये जो बेसिक नीड्स है ना उनकी, वो सब उनको भगवान प्रोवाइड करते हैं ना, सब चीजें उनके पास होती है। तो और फिर है ना भगवान इसके अतिरिक्त भी अगर कोई मेहनत करता है तो उसको इतना तो पर्याप्त धन प्राप्त हो ही जाता है कि वो खाना इत्यादि उसको अनाज मिल सकता है। और यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को क्या चाहिए कि इन समस्त वस्तुओं का अच्छी तरह से उपयोग करके अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को यानी भौतिक जीवन के संघर्ष से मुक्ति प्राप्त करके भगवान तक पहुँचने को, इस लक्ष्य को कर सके। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चित ही हम चोर कहलाएंगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर संसार में आके अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य यानी कृष्ण भक्ति को, कृष्ण की शरणागति को भूल जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए केवल देवताओं से वस्तुएं प्राप्त करते रहते और इससे क्या होता है, संसार में अधिकाधिक फंसते जाते हैं जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं। भगवान ने सृष्टि क्यों उद्देश्य, किस लिए सृष्टि का बनाया क्यों है भगवान ने, तो श्री प्रभुपाद ने पहले वाले श्लोक के तात्पर्य में बताया था कि सृष्टि बनाने का उद्देश्य क्या है, कि श्लोक नंबर 10 के तात्पर्य की पहली लाइन में श्री प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बताया कि प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भागवत धाम वापस जाने का अवसर है। ये संसार में भगवान ने जो भौतिक सृष्टि बनाई है और उसमें जो हमारे लिए बहुत सारी ये सारी सुविधाएं हैं, वो इसलिए है कि हम भगवान के धाम जाने के लिए ये सारी सुविधाएं हमें होंगी तो इजीली हम भगवान को पहुंच सकेंगे। लेकिन जो लोग इस अपने उद्देश्य के लिए पूर्ति के लिए काम नहीं करते बल्कि इंद्र तृप्ति के लिए काम करते रहते हैं और अधिकाधिक पढ़ते जाते हैं जो सृष्टि का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? भगवत धाम को प्राप्त करना। इंद्र तृप्ति तो नहीं है तो फिर निश्चित रूप से हम चोर कहलाते हैं। यहाँ पर इस बात के लिए कहा भोंगते स्तेन एव सह के वो तो जो खाली भोग जो खाली इंद्रिय भोग की प्राप्ति के लिए जीते रहते हैं वो तो चोर है। और आगे श्री प्रभुपाद जी साथ साथ बताते हैं कि यदि ऐसे ही करते रहेंगे तो हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोर का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोर यानी कि जो संसार में आते हैं और केवल इंद्रिय तृप्ति करना ही अपने जीवन का लक्ष्य समझते हैं, उनके जीवन का कोई अन्य लक्ष्य नहीं होता कि हमें पहुंचना क्या है। ये सफर करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं और इस सफर में केवल सफर ही करते रहते हैं, है ना। कि वो कभी मनुष्य कभी है ना पशु बनते कभी पक्षी बनते कभी क्या बनते कभी कीड़ा बनते हैं कभी मंकी बनते हैं कभी ऐसे करते 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 वो बारंबार संसार में आते रहते। कोई उनको लक्ष्य नहीं दिखता अपने जीवन का कि कब इस भवबंधन से छुटकारा मिलेगा। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह से किए जाते हैं। अब उनको खबर ही नहीं है कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। अब हमसे भी यदि कोई पूछे कि यज्ञ किस तरह से किया जाता है तो हमें भी तो खबर नहीं है, फिर हम क्या उत्तर देंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने जो श्लोक नंबर 38 बोला था ना, जैसे 2.38 में श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक भागवतम का श्लोक कोट किया है 11.5.41। मेरी इच्छा है कि उसको हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है पेज खोलिए, पेज नंबर 85 है हिंदी भगवद्गीता में। देवर्षि भूताप्त नरणाम पितृणाम न किं करुणायां ऋणे च राजन् सर्वात्मनायः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। देवर्षि भूताप्त नरणाम पितृणाम, ये पांच प्रकार के यज्ञ होते हैं, देवताओं का, ऋषियों का, भूतों का, मनुष्यों का और पितरों का। है ना, भूत माना जो दूसरे जीव पशु पक्षी हैं, देव मतलब देवता, ऋषि मतलब ऋषि और भूत अर्थात दूसरे जितने भी जीव हैं पशु हैं वो, और निर्णाम यानी मनुष्य और पितृणाम यानी पितरों के। ठीक है, ये पांच प्रकार के यज्ञ हैं। और कहते हैं न किं करो, इन सब के लिए कोई भी एहसानमंद नहीं है, नायम ऋणी च राजन और ना ही उनका कोई कर्ज रह जाता है। किस पर? सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम, जो इन सबके सर्वात्मा यानी जो इन सबके परमात्मा, गतो मुकुंद परिहृत्य करतम, जो भगवान जो मुकुंद है जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी चरण ग्रहण कर देते हैं। यानी यहाँ पर देखिए इसके अनुवाद श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह ना तो किसी का ऋणी है और ना ही किसी का कृतज्ञ, चाहे वो देवता हो, साधु हो, सामान्य जन हो अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने कितना भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर ये बात बताई है। भागवत महापुराण में वेदव्यास ने वो सुंदर बात कही है कि यदि कोई कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है फिर वो ऋणी नहीं रह जाता। हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर बताया ना कि हम सब देवता है, हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं इसलिए। लेकिन यदि वो कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है तो किसी का ऋण नहीं रह जाता उसके ऊपर। तो आगे हम इस श्लोक को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर लास्ट थर्ड लास्ट लाइन से हमने छोड़ा है, और कृष्ण की शरण कैसे ग्रहण करते हैं वो हमें बताएंगे चैतन्य महाप्रभु। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है, एकदम इजी यज्ञ बताया है। क्या? यज्ञानां जप यज्ञोस्तम, के यह है संकीर्तन यज्ञ, भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन का जो यज्ञ करते हैं, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। कोई उसके लिए नियमितः सिमरणे न कालः, कोई नियम नहीं है किसी काल का और ना ही व्यक्ति का कि भाई इसका ये वर्ण होना चाहिए, आश्रम होना चाहिए, कुछ भी नहीं। एकदम इजी एक यज्ञ है, केवल एक गाना ही तो गाना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बस इतना सा है, एक छोटा सा सॉन्ग है 16 अक्षर का, और इसको जपते रहना सारे यज्ञ इसमें पूरे हो जाते हैं और सारे जितने ऋण हैं वो सब चुक जाते हैं, और हम इस जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।